एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार,
मैं हूं आपकी पहली मेजबान और आज मेरे साथ हैं
आपका दूसरा मेजबान। और आज हम बात कर रहे हैं एक अहम किताब की, एरिक हॉब्सबॉम की द एज ऑफ कैपिटल 1848 से 1875।
हाँ, नाम सुनकर लगता है कि इतिहास का बस एक छोटा सा पन्ना है, सिर्फ 27 साल।
बिल्कुल, लेकिन ये वो 27 साल थे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया।
सही कहा, अक्सर लगता है ना कि इतिहास मतलब पुरानी बातें जिनका आज से क्या लेना देना।
हाँ, लेकिन हॉब्सबॉम यही दिखाते हैं कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन है या जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और यहाँ तक कि ये जो प्रोग्रेस और इनइक्वालिटी मतलब तरक्की और असमानता की बहस है ना,
हाँ हाँ, जो आज भी चलती है,
इन सब की जड़ें वो इसी दौर में है,
1848 से 1875। तो मतलब अगर आज को समझना है तो उस दौर में झांकना तो पड़ेगा ही, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव को समझना जरूरी होता है।
एग्जैक्टली।
और इस कहानी के सूत्रधार यानी लेखक एरिक हॉब्सबॉम वो भी कोई कम दिलचस्प शख्सियत नहीं थे।
हाँ बिल्कुल, एरिक हॉब्सबॉम मतलब 1917 से 2012 तक 20वीं सदी के बहुत ही माने हुए ब्रिटिश इतिहासकारों में से एक थे।
उनकी क्या खास बात थी?
देखिए, एक तो वो मार्क्सवादी थे जिंदगी भर, पर ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके मान लिया। वो क्रिटिकल थे, सवाल पूछते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी इतिहास को बहुत बड़े कैनवस पर देखना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव और गहरा एनालिसिस।
उनकी वो सीरीज भी तो मशहूर है, लंबी 19वीं सदी और छोटी 20वीं सदी।
हाँ हाँ, वही। और ये किताब द एज ऑफ कैपिटल उसी का हिस्सा है। देखिए, मार्क्सवादी नजरिए से उन्हें क्या मदद मिली, वो इतिहास को सिर्फ राजा रानी या लड़ाइयों से नहीं देखते थे।
अच्छा, तो फिर कैसे?
वो देखते थे समाज के अंदर क्या चल रहा है, मतलब क्लास स्ट्रगल, प्रोडक्शन के तरीके कैसे बदल रहे हैं। वो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर सबको जोड़कर देखते थे, जिसे कहते हैं ना टोटल हिस्ट्री।
अरे वाह, मतलब वो रेलवे के आंकड़ों को डार्विन की थ्योरी से जोड़ सकते थे।
हाँ बिल्कुल, यही तो कमाल था। वो सिर्फ ये नहीं बताते थे कि क्या हुआ,
तो
वो ये समझाते थे कि क्यों हुआ और उसका असर आज तक क्यों है। ये चीज उन्हें बहुत खास बनाती है।
ये तो दिलचस्प है। तो चलिए अब किताब पर आते हैं। एकदम संक्षिप्त में, ये द एज ऑफ कैपिटल है किस बारे में?
ये किताब देखिए उस क्वार्टर सेंचुरी का एनालिसिस है जब दुनिया पर बुर्जवाजी का कब्जा हो गया।
बुर्जवाजी
मतलब वो पूंजीपति वर्ग।
हाँ हाँ, जो उद्योग, व्यापार, फाइनेंस से जुड़ा मिडिल क्लास था,
और उनके साथ ही लिबरल कैपिटलिज्म का बोलबाला हो गया। दुनिया एक तरह से उसी के रंग में रंग गई।
ठीक है, तो हॉब्सबॉम का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें, क्या साबित करना चाह रहे हो?
उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें एक आयरनी भी है, मतलब एक विडंबना। वो कहते हैं कि 1848 में पूरे यूरोप में क्रांतियां हुई।
हाँ, लोगों का बसंत कहते हैं उन्हें।
बिल्कुल, तो ये क्रांतियां पॉलिटिकली तो फेल हो गई, मतलब सत्ता नहीं बदल पाई, लेकिन जिन आइडियाज के लिए वो हुई थी, जैसे ज्यादा आजादी, इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वो आइडियाज अगले 20-25 साल में सच हो गए।
लेकिन अगर क्रांतियां फेल हुई तो ये बदलाव आया कैसे फिर?
यही तो आयरनी है। ये बदलाव नीचे से, जनता के जोर से नहीं आया, ये ऊपर से आया। ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अनस्टॉपेबल फैलाव का नतीजा था। और इसे लीड कौन कर रहा था?
कौन?
वही लिबरल मिडिल क्लास, बुर्जुआजी, जो क्रांति के टाइम डर गया था। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के जरिए वो हासिल कर लिया जो क्रांति से नहीं मिला था।
अच्छा, तो मतलब हॉब्सबॉम का सवाल ये है कि 19वीं सदी के बीच की वो अलग थलग सी दुनिया आज की इस सिंगल, इंटरकनेक्टेड, लेकिन साथ ही बहुत अनइक्वल ग्लोबल सिस्टम में कैसे बदल गई।
एग्जैक्टली, ये किताब इसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। इसमें उस दौर की ग्रेट बूम की बात है, वो जो जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जर्मनी, इटली जैसे नए देश कैसे बने इसकी कहानी है, और कैसे यूरोप का दबदबा पूरी दुनिया पर फैला इसका एनालिसिस है।
लेकिन हॉब्सबॉम सिर्फ तरक्की की ही बात नहीं करते, वो इसके डार्क साइड, इसके विरोधाभासों पर भी जोर देते हैं ना।
हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो दिखाते हैं कि कैसे एक तरफ गजब की इकोनॉमिक ग्रोथ थी तो दूसरी तरफ भयानक गरीबी भी थी।
सही।
एक तरफ लिबर्टी, फ्रैटर्निटी के नारे थे तो दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका में कॉलोनियल गुलामी थोपी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, कैपिटलिज्म की ये जो सक्सेस की, उसी ने अपने अंदर अपने दुश्मन भी पैदा कर दिए थे। एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास खड़ा हो रहा था और भविष्य के इकोनॉमिक क्राइसिस और इंपीरियलिस्ट झगड़ों की जमीन भी तैयार हो रही थी।
तो ये किताब तो फिर उन सब के लिए बहुत जरूरी है जो आज की दुनिया की जड़ें समझना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो, नेशन स्टेट्स हो, कैपिटल लेबर का झगड़ा हो या ये प्रोग्रेस वर्सेस इनइक्वालिटी का मामला।
बिल्कुल सही। तो चलिए अब किताब के अंदर चलते हैं। हॉब्सबॉम ने इसे तीन हिस्सों में बांटा है, रेवोल्यूशनरी प्रिल्यूड, डेवलपमेंट्स और फिर वर्ल्ड ऑफ द बुर्जुआजी।
ठीक है, तो शुरुआत पहले हिस्से से, रेवोल्यूशनरी प्रिल्यूड। इसमें वो 1848 वाली क्रांतियां हैं, लोगों का वसंत।
हाँ, हॉब्सबॉम कहते हैं कि एक तरह से ओल्ड स्टाइल की आखिरी बड़ी क्रांतियां थीं। इनमें लिबरल, रेडिकल, वर्कर सब पुराने सिस्टम के खिलाफ थोड़े टाइम के लिए साथ आ गए थे,
लेकिन फेल हो गईं। क्यों?
क्योंकि जैसे ही लगा कि गरीब तबका, मतलब वर्किंग क्लास, सोशल सिस्टम को ही बदलने पर तुल गया है, तो लिबरल मिडिल क्लास डर गया। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की चिंता हुई। तो वो पलट गए और पुरानी ताकतों के साथ मिल गए।
तो फिर इन फेल हुई क्रांतियों की इंपॉर्टेंस क्या रही, याद क्यों करें इन्हें?
इंपॉर्टेंस ये थी कि इन्होंने पुराने यूरोप को हिला दिया और ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब सोसाइटी का मेन मुद्दा सोशल क्वेश्चन है, मतलब कैपिटल किसके पास है, लेबर कौन कर रहा है, इस पर बेस्ड झगड़ा। वो भाईचारे का सपना टूट गया और क्लास स्ट्रगल की हकीकत सामने आ गई।
इस उथल पुथल के बाद आता है दूसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, डेवलपमेंट्स, और इसकी शुरुआत होती है ग्रेट बूम से। ये क्या था?
ये था 1850 से 1870 तक का दौर। दुनिया ने ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जो पहले कभी नहीं हुई थी, अभूतपूर्व।
कारण क्या थे इसके?
कई थे, जैसे कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया में अचानक बहुत सारा सोना मिल गया तो मनी सप्लाई बढ़ गई। फिर रेलवे, बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनें बिछी। जरा सोचिए, लोहा, कोयला, मशीनें, इनकी डिमांड कितनी बढ़ी होगी।
हाँ, बात तो है।
और साथ ही इकोनॉमिक लिबरलिज्म, मतलब फ्री ट्रेड की सोच जीत गई। देशों ने एक दूसरे के माल पर टैक्स कम कर दिए।
और इसका नतीजा, दुनिया कैसे बदली?
नतीजा जबरदस्त। दुनिया सच में बदल गई। अलग अलग इकोनॉमीज जुड़ गईं, एक ग्लोबल इकोनॉमी बनने लगी। बुर्जुआजी ने बेहिसाब पैसा कमाया और एक गजब का ऑप्टिमिज्म फैल गया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म मिलकर इंसान को पता नहीं कहां ले जाएंगे।
इसी से जुड़ा है अगला आइडिया, एकीकृत दुनिया या द वर्ल्ड यूनिफाइड। ये कैसे हुआ? सिर्फ ट्रेड से?
ट्रेड तो था ही, पर टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। स्टीमशिप, टेलीग्राफ, इन्होंने दुनिया छोटी कर दी।
कैसे?
स्टीमशिप से समुंदर पार करना हफ्तों की जगह दिनों की बात हो गई। टेलीग्राफ से खबरें मिनटों में पहुंचने लगीं। इससे सिर्फ गुड्स ही नहीं, कैपिटल, इंफॉर्मेशन और लोग, लाखों लोग माइग्रेट हुए, बहुत तेजी से मूव करने लगे। इसने एक तरह का ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर भी बनाया। कुछ देश बन गए इंडस्ट्रियल सेंटर और बाकी उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले पेरिफेरी।
लेकिन ये कनेक्शन बराबरी का नहीं था, सेंटर और पेरिफेरी का रिश्ता। क्या इसी कनेक्शन ने नेशनलिज्म को भी हवा दी? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉब्सबॉम दिखाते हैं कि दुनिया के जुड़ने के साथ ही देशों के अंदर हम और वो वाली फीलिंग भी स्ट्रांग हुई। जब लोगों ने देखा कि दुनिया में अलग भाषा, अलग कल्चर वाले लोग हैं, तो अपनी पहचान को लेकर और सचेत हुए और इसी दौर में जर्मनी और इटली जैसे बड़े नेशन बने।
हाँ, अगला चैप्टर राष्ट्रों का निर्माण इसी पर है। पर क्या ये राष्ट्र लोगों की मर्जी से बने थे?
हॉब्सबॉम का तर्क है कि ज्यादातर ये टॉप डाउन प्रोजेक्ट थे, मतलब ऊपर से थोपे गए। बिस्मार्क जर्मनी में, कैवोर इटली में, इन नेताओं ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स का इस्तेमाल किया।
किस लिए?
ताकि अलग अलग इलाकों को जोड़कर एक बड़ा पावरफुल देश बनाया जा सके। मकसद था बड़ा नेशनल मार्केट, मजबूत आर्मी, इंटरनेशनल पावर। नेशन अब इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए जरूरी फ्रेमवर्क बन गया, पर इस प्रोसेस में अक्सर माइनॉरिटीज को दबाया गया।
और इसी दौर में नई तरह की लड़ाइयां भी हुई, संघर्ष और युद्ध। ये पहले से अलग कैसी थी?
ये लड़ाइयां सीधे सीधे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग से जुड़ी थी। क्रीमियन वॉर, इटली जर्मनी के यूनिफिकेशन वॉर्स, अमेरिकन सिविल वॉर।
अच्छा।
इनमें पहली बार इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। रेलवे से सेना भेजना, नई तरह की राइफल्स, इन युद्धों ने मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स की पावर को और बढ़ाया।
तो एक तरफ नेशन बन रहे थे, युद्ध हो रहे थे, इकोनॉमी बदल रही थी, आम लोगों की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था? लोकतंत्र की ताकतें इसी बारे में है।
हाँ, पर यह बदलाव बहुत धीमा था। ज्यादातर लिबरल लीडर्स आम जनता को वोट देने से डरते थे, उन्हें मॉब रूल का डर था।
लेकिन नीचे से दबाव तो होगा?
बिल्कुल। फैक्ट्री वर्कर्स ऑर्गेनाइज होने लगे थे, ट्रेड यूनियन बन रहे थे, ब्रिटेन जैसी कुछ जगहों पर वोटिंग राइट्स धीरे धीरे बढ़े, मास पॉलिटिकल पार्टीज उभरने लगी। तो एक टेंशन साफ थी, बुर्जुआजी स्टेबिलिटी चाहती थी और वर्किंग क्लास पॉलिटिकल आवाज।
लेकिन इस पूरी कहानी में, इस तरक्की में कुछ लोग पीछे छूट गए, हारे हुए या लूजर्स चैप्टर उन्हीं के बारे में है शायद।
बिल्कुल, और ये हॉब्सहॉम के एनालिसिस का बहुत जरूरी हिस्सा है। वो हमें याद दिलाते हैं कि ये गोल्डन एज सबके लिए गोल्डन नहीं था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर इंडिजिनस लोगों की जमीनें छीनी गईं, उनके कल्चर खत्म किए गए, वहां के किसानों को जबरदस्ती और बहुत नुकसानदेह शर्तों पर ग्लोबल मार्केट से जोड़ा गया।
हॉब्सबॉम यहां एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म और ये जमीन हड़पना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कैपिटलिज्म के ग्लोबल फैलाव का जरूरी हिस्सा था।
हाँ, वो इस पर बहुत जोर देते हैं। बिना कॉलोनीज के शोषण के, बिना इन हारने वालों की कुर्बानी के, यूरोप के विजेताओं की ये शानदार तरक्की शायद मुमकिन ही नहीं थी।
और ये विजेता कौन थे? अगला चैप्टर विजेता इसी बुर्जुआजी का पोर्ट्रेट बनाता है।
हाँ, उनकी इकोनॉमिक पावर, सोशल स्टेटस, उनके वैल्यूज जैसे इंडिविजुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, साइंस और प्रोग्रेस में यकीन। रिस्पेक्टेबल दिखना बहुत जरूरी था।
मतलब
एक खास तरह का पहनावा, घर, पेट्रियार्कल फैमिली। हॉब्सबॉम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, औथ बुर्जुआजी और छोटे मिडिल क्लास के बीच का फर्क भी दिखाते हैं।
और इनके आने से पूरा समाज कैसे बदला? बदलता समाज चैप्टर।
इसमें शहरों के एक्सप्लोसिव ग्रोथ की बात है। गांव से लोग शहरों में आ रहे थे, भीड़, गंदगी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी। फैमिली स्ट्रक्चर बदल रहा था, पुरानी एरिस्टोक्रेसी की पावर कम हो रही थी और नए पैसे वालों से उनके रिश्ते बड़े कॉम्प्लेक्स थे। कभी झगड़ा, कभी दोस्ती। किसान भी अब मार्केट पर डिपेंडेंट हो गए थे। समाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्ट्रेटिफाइड हो रहा था।
तो ये था दूसरा हिस्सा कि दुनिया कैसे बदली। अब तीसरा और आखिरी हिस्सा, पूंजीपति वर्ग की दुनिया। इसकी शुरुआत भूमि या द लैंड से होती है। ये थोड़ा अजीब नहीं? इंडस्ट्रियल एज में जमीन की बात
लगता है, पर हॉब्सबॉम बताते हैं कि जमीन अब भी सेंट्रल थी। बल्कि इसी दौर में ग्लोबल एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। कैपिटलिज्म गांव में घुस गया। जमीन अब खरीदने बेचने की चीज बन गई।
अच्छा,
किसानों को या तो मजदूर बनना पड़ा या माइग्रेट करना पड़ा। दुनिया भर की खेती किसी न किसी तरह ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम से जुड़ गई।
और माइग्रेशन की बात आपने की, चलते फिरते लोग या मैन ऑन द मूव चैप्टर इसी पर है।
हाँ, ये मैसिव माइग्रेशन का युग था। करोड़ों यूरोपियन अटलांटिक पार करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गए। देशों के अंदर भी गांव से शहर भागे लोग।
क्यों?
ये ग्लोबल इकोनॉमी के जुड़ने का नतीजा भी था और कारण भी। इससे नई इंडस्ट्रीज को सस्ते लेबर मिले।
और ये लेबर जा कहाँ रहे थे? शहर, उद्योग, श्रमिक वर्ग चैप्टर।
ये चैप्टर उस नए माहौल को दिखाता है। तेजी से बढ़ते शहर, विशाल फैक्ट्रियां, माहौल अक्सर गंदा, खतरनाक होता था, पर उसमें एक नई एनर्जी भी थी। हॉब्सबॉम दिखाते हैं कि ये प्रोलेटेरियट, मतलब मजदूर वर्ग, एक जैसा नहीं था। उसमें कई डिवीजन थे,
लेकिन फिर भी।
हाँ, लेकिन फैक्ट्री में साथ काम करने, शहर में साथ रहने से उनमें धीरे धीरे एक कॉमन आइडेंटिटी, एक चेतना पैदा हो रही थी।
और यहीं से ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट शुरू हुए।
बिल्कुल, ट्रेड यूनियन बने, बेहतर वेजेस के लड़ने लगे, सोशलिस्ट आइडियाज फैले। मार्क्स ने 1864 में फर्स्ट इंटरनेशनल बनाया और 1871 में पेरिस कम्यून हुआ।
वाओ,
जब मजदूरों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसे कुचल दिया गया, पर वो एक सिंबल बन गया।
तो एक तरफ ये उभरता मजदूर वर्ग, दूसरी तरफ रूलिंग बुर्जुआजी, पूंजीपति दुनिया चैप्टर उनकी मेंटालिटी को देखता है।
हाँ, और उनके कॉन्ट्रेडिक्शंस को भी, जैसे पब्लिक में मोरालिटी का दिखावा, पर प्राइवेट लाइफ में, खासकर सेक्सुअल मैटर्स में हिपोक्रेसी। घर उनके लिए किला था, साइंस प्रोग्रेस में भरोसा, पर नीचे वालों से डर भी। सेल्फ हेल्प और मेरिट की आइडियोलॉजी उनके लिए बहुत जरूरी थी अपनी पावर को जस्टिफाई करने के लिए।
इंटेलेक्चुअल दुनिया में क्या चल रहा था? विज्ञान, धर्म, विचारधारा चैप्टर।
इस दौर में साइंस सबसे ऊपर आ गया। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 एक लैंडमार्क थी। उसने लाइफ की मटीरियलिस्टिक व्याख्या दी, जिससे धर्म को सीधी चुनौती मिली।
तो साइंस वर्सेस रिलिजन।
हाँ, बड़ा संघर्ष छिड़ा और पुरानी धार्मिक आइडियोलॉजीज की जगह नई सेक्युलर आइडियोलॉजीज ज्यादा पावरफुल हुई। लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म।
और आर्ट्स पे क्या असर हुआ?
आर्ट्स इस युग की रियलिटी और कॉन्ट्रडिक्शंस को रिफ्लेक्ट कर रही थी। नॉवेल्स में रियलिज्म आया, डिकेंस, फ्लॉकार्ट। आर्किटेक्चर बहुत ग्रैंड हो गया, बुर्जुआ कॉन्फिडेंस का सिंबल, लेकिन नए विद्रोही आर्ट फॉर्म्स भी आने लगे थे, जैसे इंप्रेशनिज्म पेंटिंग में।
तो किताब के अंत में 1875 के पास हॉब्सबॉम हमें कहां छोड़ते हैं?
वो 1875 से थोड़ा आगे देखते हैं, बताते हैं कि वो ग्रेट बूम का दौर खत्म हो रहा था। 1873 में एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिससे एक लंबी मंदी ग्रेट डिप्रेशन ये 1930 वाला ने शुरू हुई। इसने लिबरल कैपिटलिज्म को हिला दिया।
नतीजे क्या हुए?
नतीजे देशों ने फ्री ट्रेड छोड़कर प्रोटेक्शनिज्म अपनाना शुरू किया, कॉलोनीज के लिए मारामारी तेज हुई, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, और बड़ी सोशलिस्ट पार्टियां बनी। यानी ये दौर अब एज ऑफ एम्पायर के लिए स्टेज सेट कर रहा था।
वाह, ये तो वाकई एक पूरी दुनिया का नक्शा खींच देता है। सिर्फ 27 सालों में कितना कुछ बदल गया। अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो श्रोताओं के लिए, तो वो क्या होंगी? 3-4 सबसे जरूरी संदेश।
जरूर। मेरे हिसाब से पहला, बुर्जुआ लिबरल कैपिटलिज्म की जीत ये दुनिया पर हावी होने वाली मेन सिस्टम बन गया। फ्री ट्रेड, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, साइंस में यकीन।
दूसरा,
एक सिंगल इंटरकनेक्टेड दुनिया का बनना, पर गहरे विरोधाभासों के साथ। दुनिया जुड़ी पर बराबरी से नहीं। हायरार्की थी सेंटर और पेरिफेरी। आज के ग्लोबलाइजेशन की जड़ें यही हैं, और इसी जुड़ाव ने नेशनलिज्म को भी तेज किया।
और तीसरा,
प्रोग्रेस के अंदर छिपे अंतर विरोध। ये प्रोग्रेस सीधी रेखा में नहीं चलती, न सबके लिए अच्छी होती है। तरक्की हुई पर भारी कीमत चुकाकर, आजादी के साथ गुलामी, अमीरी के साथ गरीबी। हम इसे आज भी देखते हैं ना, बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पर सवाल उठता है किसके लिए।
बिल्कुल। और चौथा,
क्लास स्ट्रगल का मेन सोशल डायनामिक बनना। अब मुख्य टकराव बुर्जुआजी और नए इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरिएट के बीच था। वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ, जिसने आगे के इतिहास को बदला।
किताब में जरूर कुछ ऐसी बातें होंगी जो दिमाग में रह जाती हैं, हॉब्सबॉम के कुछ ऐसे तर्क जो याद रखने लायक हों।
हाँ, कुछ बहुत पावरफुल हैं। पहला, 1848 की विरासत। क्रांतियां फेल हुई, पर उन्होंने सोशल क्वेश्चन, कैपिटल और लेबर का रिश्ता, इनइक्वालिटी को हमेशा के लिए पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया।
दूसरा,
रेलवे का सिम्बोलिज्म। हॉब्सबॉम रेलवे को इस युग का सच्चा प्रतीक मानते हैं। वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं था, वो इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कनेक्शन, स्पीड, फ्यूचर में यकीन, सबका प्रतीक था।
और तीसरा,
बुर्जुआ प्रोग्रेस की कीमत। ये जीत मुफ्त नहीं थी, ये माइनॉरिटी की जीत थी जो ग्लोबल इनइक्वालिटी, कॉलोनियल हिंसा और वर्किंग क्लास एक्सप्लॉयटेशन पर बनी थी। हॉब्सबॉम चमक के पीछे का अंधेरा दिखाते हैं।
ये आइडियाज आज कैसे रेलेवेंट है, इनसे आज क्या सीख सकते हैं?
बहुत कुछ। पहला, आज के ग्लोबलाइजेशन को समझना। ये किताब मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की ओरिजिन स्टोरी है। वो पैटर्न आज भी दिखते हैं, सप्लाई चेन, डिवीजन ऑफ लेबर, माइग्रेशन, पावर इम्बैलेंस।
और टेक्नोलॉजी का असर?
हाँ, टेक्नोलॉजिकल चेंज का एनालिसिस। जैसे रेलवे, टेलीग्राफ ने 19वीं सदी बदली, वैसे ही आज इंटरनेट, AI समाज को कैसे बदल रहे हैं। हॉब्सबॉम का एनालिसिस हमें पूछना सिखाता है, किसको फायदा, कौन पीछे, पावर कैसे शिफ्ट हो रही है।
प्रोग्रेस को लेकर भी सवाल पूछने चाहिए।
बिल्कुल, प्रोग्रेस पर क्रिटिकल नजरिया। जब भी कोई बड़ी तरक्की की बात हो, पूछो किसके लिए, असली कीमत कौन चुका रहा है, छिपे नुकसान क्या हैं। ये हम अपने आसपास के प्रोजेक्ट्स पर भी लागू कर सकते हैं।
और इकोनॉमी पॉलिटिक्स का रिश्ता?
इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अटूट संबंध को पहचानना। उस दौर के पॉलिटिकल फैसले इकोनॉमिक जरूरतों से जुड़े थे, ये आज भी सच है। ट्रेड वॉर्स, क्लाइमेट चेंज डिबेट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, सबके पीछे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं।
और नेशनलिज्म पर?
नेशनलिज्म की प्रकृति को समझना। नेशनल आइडेंटिटी अक्सर एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट होती है, जिसे खास मकसदों के लिए बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। ये आज के राष्ट्रवादी उभारों को समझने में मदद करता है।
तो कुल मिला के आपके लिए सबसे बड़ी सीख या कोई सरप्राइजिंग बात?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि आज की दुनिया, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, हमारे नेशन स्टेट्स, कैपिटल लेबर का झगड़ा, साइंस में भरोसा, इन सब की जड़ें कितनी गहराई से उस छोटे से पीरियड 1848 से 1875 में हैं। ये सिर्फ पास नहीं, हमारे प्रेजेंट का DNA है। ये मॉडर्निटी का तूफानी जन्म था।
और मेरे लिए हॉब्सबॉम की ये इनसाइट बहुत मायने रखती है कि मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम के बेस में ही गहरे स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। प्रोग्रेस और इनइक्वालिटी, कनेक्शन और डिविजन, लिबर्टी और सप्रेशन, और ये कॉन्ट्रडिक्शंस आज भी दुनिया को बदल रहे हैं। ये किताब टोटल हिस्ट्री का शानदार उदाहरण है, सब कुछ कैसे जुड़ा है। हमारी कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए ये नजरिया बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सहमत हैं।
चलिए श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। हॉब्सबॉम दिखाते हैं कि कैसे कैपिटलिज्म ने नेशन स्टेट्स को मजबूत किया, पर साथ ही एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाई जो नेशन की सीमाओं को लांघती है, उन्हें चुनौती देती है। क्या आज हम यही कॉन्ट्रडिक्शन नए रूपों में नहीं देख रहे? जहां मल्टीनेशनल कंपनियां, ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सब नेशनल गवर्नमेंट्स की पावर को चैलेंज करते दिखते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।